તારીખ 2/1/1997 ડાયરીના બોલ નંબર 1571 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 185.
ડાયરીમાંથી અધ્યાત્મ પરિણામોની કેટલીક સૂક્ષ્મ વાતો લઈએ. સૂક્ષ્મ પણ છે, સુંદર પણ છે, સુંદર છે, સૂક્ષ્મ પણ છે, સુંદર પણ છે. ડાયરીમાં બોલ છે 1571 નંબર. ભવિષ્યમાં થોડું પ્રસિદ્ધિ, ભવિષ્યમાં થોડું, નજીકના ભવિષ્યમાં થોડું પ્રસિદ્ધ પણ થશે એટલે થોડું થોડું શરૂ કરીએ. નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપના અવલંબનના પુરુષાર્થમાં ચાલતા વિકલ્પનો નિષેધ વર્તે અને અન્યત્વ ભાષે. પુરુષાર્થ વિષયક આ બોલ છે. આઠેક બોલની ચર્ચા કરી છે. આ બોલમાં આઠેક બોલ લખાયેલા છે, એકમાં આઠ લખાયેલા છે. પુરુષાર્થ વિષયક છે. સાધક અવસ્થામાં પોતાના નિજ નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપના અવલંબનનો પુરુષાર્થ હોય છે અને એ પુરુષાર્થના સ્વવિકલ્પ દશામાં પણ ચાલતા વિકલ્પનો નિષેધ વર્તે છે.
જી,
કેમકે સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ છે. નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં પુરુષાર્થ પણ નિર્વિકલ્પ ભાવે વર્તે છે, કેમકે પુરુષાર્થના પર્યાયમાં વિકલ્પ નથી, વિકલ્પ ચારિત્રના પર્યાયમાં છે. વિકલ્પ ચાલે છે તો ચારિત્રના પર્યાયમાં ચાલે છે. હિન્દી મેં લેંગ્વેજ ભૂલ ગયા મેં.
વિકલ્પ જ્ઞાની પર્યાય કહેવાય,
રાગ કે પર્યાય હે એટલે ચારિત્ર. નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ, સ્વરૂપ કેસા હે આત્મા, નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ હે. વો તો ઇસલિયે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ કહેતે હૈ કે વિકલ્પ કા અભાવ જબ હોતા હૈ તબ પર્યાય કો નિર્વિકલ્પ કહેતે હૈ. પર્યાય મેં જો વિકલ્પ હૈ વો સ્વરૂપ કે અવલંબન સે ઉસકા અભાવ હો જાતા હૈ, પેદા હી નહીં હોતા. તબ જો દશા રહેતી હૈ વો સ્વરૂપાકાર દશા હૈ. કેસી દશા હૈ? સ્વસ્વરૂપાકાર. જો સ્વસ્વરૂપાકાર દશા હૈ ઉસકો પૂર્વ વિકલ્પ કા પ્રતિપક્ષ દેખ કરકે દશા કો નિર્વિકલ્પ કહા, ક્યોંકે વિકલ્પ કા અભાવ હુઆ. પર સ્વરૂપાકાર હોને સે સ્વરૂપ કો ભી નિર્વિકલ્પ કહા, વો પર્યાય કા વિચાર સ્વરૂપ પર ગયા. વાસ્તવ મેં સ્વરૂપ ન તો સ્વવિકલ્પ રૂપ હૈ, ન તો નિર્વિકલ્પ રૂપ હૈ. જૈસા હૈ વૈસા હૈ. તો એસા જો નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ હૈ, મૂળ મેં જૈસા હૈ વૈસા, લેકિન દશા કે અનુસાર કહેતે હૈ. જો પુરુષાર્થ ચલતા હૈ, ઉસકા અવલંબન કા પુરુષાર્થ, અવલંબન મેને આધાર લેના, આશ્રય કરના, મેપણા કા જોર હોના, મેપણા કા જોર હોના. ઇસ પ્રકાર કે પુરુષાર્થ કે પરિણમન મેં ચલતે હુએ, વર્તતે હુએ વિકલ્પ કા નિષેધ ચલતા હૈ, નિષેધ વર્તતા હૈ નિર્વિકલ્પ ભાવ સે. નિષેધ કા વિકલ્પ નહીં કરના પડતા, લેકિન ઉસકા નકાર હૈ ઉસમે. और चलते हुए विकल्प में अन्यपना अनुभव गोचर होता है, भाषित होता है माने अनुभव गोचर होता है कि विकल्प चलता है बगल में, उसमें मैं नहीं हूं, कोई अन्य चीज है, सहज अपने कारण से चलता है, मेरे कारण से नहीं चलता, न मैं करता हूं न मैं कराता हूं न मेरा उसमें कोई अनुमोदन भी है। ऐसा कृतकारित अनुमोदना से अन्यत्व लगता है उसको कहते हैं अन्यत्व भाषित होता है। ये अध्यात्म परिणति का एक रूप दिखाया, इसके बहुत से रूप हैं, अध्यात्म परिणति के भी बहुत से रूप है और अनेक प्रकार से रूप से वो सुंदर है। जैसे हमारे मनुष्य में शरीर की सुंदरता होती है, पुरुष को भी होती है, स्त्री को भी होती है, दोनों को होती है, तो उसमें क्या है, सुंदरता में सुंदरता का भी अनेक अंग है। जैसे नमनाश है वो भी एक सुंदरता का अंग है, जो वर्ण होता है वो भी एक सुंदरता का अंग है, और उसमें जो नमनाश है उसको तो एक शब्द में बहुत बातें हैं, नाक की नमनाश होती है, आंखों की होती है, होठों की होती है, कपाल की होती है, गर्दन की होती है, ये गाल की भी होती है, अनेक प्रकार है इसमें, लेकिन एक शब्द में कई बातें, अनेक अंगों की बातें एक शब्द में रख दिया। वैसे अध्यात्म परिणति भी बहुत सुंदर है और इसके भी अनेक सुंदर रूप हैं। उसमें ये पुरुषार्थ की बात हुई कि जब निर्विकल्प स्वरूप का अंतर्मुखी पुरुषार्थ अवलंबन के लिए चलता है तब विकल्प का निषेध वर्तता है और उसमें अन्यत्व भिन्नपणा पर परायापणा महसूस होता है, भाषित होता है माने महसूस होता है।
दुख रूप परिणाम होने से निषेध होता है, दुख रूप परिणाम होने से निषेध होता है।
उस क्या है कि चारित्र गुण के, चारित्र गुण भी एक अंग है ना, तो एक अंग में है ये रोग, ये रोग है और स्वरूप निरोगी है तो रजिस्ट करेगा ही करेगा नेचुरली। जैसे शरीर का रेजिस्टेंस पावर रोग का निषेध करता है कि नहीं करता है, नेचुरली कराना, उसमें कुछ प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती,
अपने आप
नेचुरली वो रेजिस्ट करता है। उस तरह से ये स्वरूप भूत परिणमन होने से, स्वरूप का पुरुषार्थ है वो स्वरूप भूत परिणमन होने से, वीर्य गुण का एक अंग में चारित्र गुण की अवस्था में कुछ अंश में जो विकृति है, दुख है, रोग है, उसका उसको रेजिस्ट करता है। और फीलिंग के हिसाब से देखे तो उसमें अन्यपणा फील होता है, परायापणा फील होता है। ये बात रही हुई पुरुषार्थ विषय,
એટલે મનનો પોતાનો વિકલ્પ હોવો છતાં એનો સ્વામી નથી થતો અને પછી અન્ય પણ ભાષે,
હા સ્વામિત્વ થવાનો સવાલ નથી, અન્ય પણ જ ભાષે,
પાછું પોતાનો જ વિકલ્પ છે,
પોતાનો સ્વામિત્વ તો પોતાના સ્વરૂપમાં આવી ગયું એટલે પાકો પાસે છે।
પોતાનો જે અનુભવ છે એ માત્ર જ્ઞાન મળે છે।
આચાર્ય મહારાજે પ્રદેશ પૂજ્યતાનો વિષય લીધેલો છે એ અહીંયા આપણે કંઈ કરવું પડે,
હા જોરથી કહેવું હોય, પુરુષાર્થના જોરમાં કહેવું હોય તો પ્રદેશ ભિન્નતા પણ લેવામાં વાંધો નથી।
પોતાપણાનો અનુભવ જ્ઞાનમાં રહીને વિકલ્પનું જાણવું થાય છે,
પોતાપણાનો અનુભવ સ્વરૂપમાં છે,
સ્વરૂપમાં છે.
વિકલ્પ જોડે છે એટલે સ્વપર પ્રકાશકમાં જણાઈ જાય છે,
જણાઈ જાય છે.
પણ જણાવવાની સાથે સાથે એક પ્રક્રિયા નિષેધાત્મક પણ છે અને પોતા પારકાપણાની પણ છે. બીજું, પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ સ્વભાવની ભાવના બહિર્મુખ વૃત્તિને નિષેધે છે. બાહ્ય વૃત્તિ પ્રત્યે ઉપેક્ષા થાય છે. શું કહેવું છે કે સ્વભાવની ભાવના, સ્વભાવ કેવો છે? પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ સ્વભાવ છે. સમજવા માટે પર્યાયથી થોડું સમજવું પડશે, કેમ કે પર્યાયમાં બહિર્મુખપણું અને અંતર્મુખપણું દો પ્રકાર પર્યાય મેં હોતે હૈ. તો પરિપૂર્ણ અંતર્મુખપણા કબ હોતા હૈ? પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા 13મે સ્થાનમાં હોતી હૈ તબ પરિપૂર્ણ અંતર્મુખપણા હોતા હૈ. નિરવશેષ અંતર્મુખ પરિપૂર્ણ મેને એક અંશ ભી બહિર્મુખમાં નહીં રહેતા. વો જો પરિપૂર્ણ અંતર્મુખપણા હુઆ વો ક્યું હુઆ, કહાં સે હુઆ? કે સ્વભાવ સ્વરૂપ એસા થા વો પ્રગટ હુઆ. અપના જો સ્વભાવ ઓર અપના જો સ્વરૂપ વો વહાં પ્રગટ હુઆ હૈ. તો યહાં દશા કી બાત નહીં લેના હૈ, સમજને કે લીએ વો દશા કા દ્રષ્ટાંત બતાયા, પૂર્ણ દશા કા. અબ સ્વભાવ સમજ લો ઉસ પર સે, કે પરિપૂર્ણ અંતર્મુખ અપના સ્વભાવ સ્વરૂપ હૈ, ઉસકી ભાવના મેં તો ઉસકી ભાવના હોતી હૈ, સ્વભાવ કી ભાવના હોતી હૈ, તો બહિર્મુખ વૃત્તિ કા ઉસમાં ઉસમે નિષેધ આતા હૈ, હોતા હૈ. ये एक रूप है इसका, स्वभाव की भावना का एक रूप है. और जितना भी बाह्य वृत्ति का अंश है उसकी उपेक्षा हो जाया करती है, उसकी अपेक्षा रहती नहीं है. मुझे ऐसा भाव हो ऐसी कभी अपेक्षा नहीं होती, उसकी उपेक्षा हो जाया करती है, उससे उदासीनता रहती है. ये विषय चला अंतर्मुखी स्वभाव की भावना का. ये भावना भी बहुत सुंदर है, जैसे पुरुषार्थ सुंदर है तो भावना भी सुंदर है. सुंदरता का 8 अंग है तो बहुत, लेकिन जैसे सम्यक्त्व का 8 अंग है इसलिए सम्यक दर्शन 8 અંગો છે, સુશોભિત હૈ. કૈસા હૈ?
સુશોભિત હૈ.
8 જૈસે અલંકાર છે, શોભિતપણા હોતા હૈ, અલંકાર છે, શોભતા હૈ શરીર. એસે સમ્યક દર્શન કે આભૂષણ ઇસકે 8 અંગ હૈ. એસે યહાં અધ્યાત્મ કે સુંદરતા કા 8 અંગ દિયા હૈ. 8 અંગો સે ઉસકી બાત ક્યા હૈ, નેચરલી 8 આયા હૈ. લિખા તબ તો કોઈ ગિનતી નહીં થી કે કિતના લિખેંગે, જૈસે જૈસે ભાવ ચલતા ગયા વૈસે વૈસે લિખના હોતા હૈ. લિખના જબ હોતા હૈ ઉસમે તો કુછ એકાદ ભાવ કી સ્ફુરણા હોતી હૈ, ફિર લિખતે લિખતે જિતના સહેજ લિખા જાતા હૈ ઉતના લિખા જાતા હૈ. તો નેચરલી ઉસમે 8 બાતે આઈ હૈ. आगे पीछे सोच करके नहीं लिखते, एकाध मुद्दे का स्मरण आता है कि तो लिखते वक्त जो धारा चलती है उसी अनुसार कलम चल जाती है, उतनी चल जाती है. शब्द भी इसी वक्त आते हैं, एक सेकंड पहले मालूम नहीं पड़ता कि ये शब्द का प्रयोग होगा, वो तो हमको ही मालूम नहीं पड़ता है. उतनी सहजता रहती है. पर से भिन्नत्व की भावना है। हम यहां से लिया, ये बात स्वरूप से लिया था पॉजिटिव साइड से, अब ये बात नेगेटिव साइड से ले रहे हैं कि पर से भिन्नत्व की भावना स्वरूप के असंगपणा को दृढ़ करके पर भाव का एकत्व को तोड़ देती है या रोक लेती है। ऐसा एक कार्य होता है तो उसमें पर से भिन्नत्व की भावना कार्य करती है और वो भावना अपना वो असंग स्वरूप है, त्रिकाल असंग है, वो असंगपना को दृढ़ीभूत करती है और एकत्व को होने नहीं देती, एकत्व को रोक लेती है, एकत्व को होने नहीं देती, क्योंकि एकत्व होने से ये चेहरा बिगड़ता है, चेहरे पे दाग आता है, पर से एकत्व होने से आत्मा का आत्मा की मुद्रा बिगड़ती है। तो ये इसको रोकने के लिए भिन्नत्व की भावना है और असंग तत्व का जो दृढ़पना है वो काम करता है, वो साइमल्टेनियसली एक साथ काम करता है, युक्त काम करता है।
अन्यत्व भावना आई या पर से भिन्नत्व की बात
है, जो उसमें तो अन्यत्व भाषित होता है वो बात है, यहाँ भिन्नत्व की भावना की बात है, अलग अलग पहलू है, एक ही पर्याय के पर्याय एक है, इसके अलग अलग पहलू है तो अध्यात्म के एक ही पर्याय, उसके अलग अलग पहलू है, जैसे हीरे के पहल अलग अलग होते हैं, हीरा एक है, और हीरा की सुंदरता कब है कि उसके पहलों से है, तो इस तरह से एक पर्याय के ये अलग अलग पहलू है। अच्छा निकल गया है, लिखा है जून में मैंने लिखा है, दिसंबर पूरा हो गया, छह महीने पहले ही लिखा है। चौथा, स्वरूप शुद्धत्व को भाने से, स्वरूप में जो शुद्धत्व है, त्रिकाल अनंत शुद्धत्व है, क्यों कि निगोद में अनंत काल प्रचुर कषाय कलंक के बीच में रहने पर भी उसको दाग नहीं लगा। जैसे सोने की डल्ली, हमारे गुजराती में लगड़ी बोलते हैं, कीचड़ में रखी कई सालों तक, कितने कई सालों तक, यहां से उठाई तो सोना ही सोना था, उसमें कोई कीचड़ उसमें गया नहीं, प्रवेश को प्राप्त नहीं किया, सोना कीचड़ वाला हुआ ही नहीं, सोना सोना ही रहा, क्यों कि वो धातु इतनी मजबूत है कि वो अपना सोनापन छोड़ती नहीं, कीचड़ में भी अपना सोनापन का वो कुछ गड़बड़ नहीं करते, इतनी मजबूत है। ऐसे आत्मा शुद्ध है, कैसे शुद्ध है, शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध है, इसलिए वो परम पवित्र है, परिपूर्ण पवित्र है। अपवित्रता की गंध उसमें नहीं है, गंध भी नहीं है, अपवित्रता नहीं है क्या, अपवित्रता की गंध भी नहीं है, और निगोद की अवस्था में पूर्ण अपवित्रता जो अवस्था में होती है, इसकी गंध बाहर नहीं जाती थी और इसकी परछाई बाहर नहीं पड़ती, इतना प्रकृष्ट शुद्ध है। ऐसे शुद्धत्व को भाने से मैं ऐसा शुद्ध हूं, ऐसे शुद्धत्व को भाने से अवस्था में पवित्रता का आविर्भाव होता है, पवित्रता आने लगती है, उद्भव होने लगती है, ऐसा बनता है। ये पवित्रता के दृष्टिकोण से ये बात है, पवित्रता का पहलू है इसमें, ये बहुत सुंदर पहलू है। आत्मा जो परिपूर्ण पवित्र है, इसकी ये शोभा का मुख्य अंग है। जैसे मुद्रा की जो शोभा है उसमें मुख्य अंग कौन है? नाक। नाक के रूप निहारता और डिप्थोंग है। ये जो कोई कवि की पंक्ति है, कृपालु देव ने इसका उद्धरण किया है, कोई कवि ने लिखा है, लेकिन कृपालु देव तो इसमें से बहुत निकालते हैं कि नाके रूप निहारता, लोगों नाक से रूप निहार, नाक भरे मन और ध्यान में नासिकाग्र दृष्टि होती है तो स्वरूप निहारने में आता है निज रूप को निहारते हैं। ध्यान में क्या होता है? अर्ध ऊंची हुई, अर्ध खुली हुई जो दृष्टि है वो नासिकाग्र होती है, भगवान की प्रतिमा का होता है वैसे। तो रूप निहारते मैंने आत्मा की सुंदरता को निहारते हैं, निहारते हैं। दो अर्थ निकला, शरीर का रूप भी नाक से लोग गिनते हैं, तो कवि ने तो कोई लौकिक बात से लिखा होगा, इन कृपालु देव ने उसका आध्यात्मिक अर्थ लिया है, राना के रूप निहार। ऐसे स्वरूप की सुंदरता में, अध्यात्म की सुंदरता में पवित्रता मुख्य अंग है, इससे वो अधिक सुंदर है। पांचवा, परिपूर्ण सुख की प्रतीति पर के प्रति परम वैराग्य और उदासीनता को उत्पन्न कर देती है। क्या पहलू आया है? स्वरूप की परिपूर्णता, मैं अपने स्वरूप से परिपूर्ण हूं, मैं मेरे स्वरूप से परम पूर्ण हूं, पूरा पूर्ण हूं, कोई अधूरास मेरे में नहीं है, तो फिर मुझे किस चीज की वांछा होगी, किस चीज की जरूरत हो, किसकी अपेक्षा हो? जब किसी की अपेक्षा नहीं तो सबों की उपेक्षा होगी, उपेक्षा माने उदासीनता होगी, वही वैराग्य है। ज्ञानी वैराग्य क्यों होता है? कि वो अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं, कि मैं मेरे स्वरूप से ही पूर्ण हूं, मुझे किसकी आवश्यकता है, मुझे किसकी अपेक्षा है। किसी की अपेक्षा किस ज्ञानी को होती है? किसी भी प्रकार का संयोग हो या वियोग हो, दो प्रकार का भेद है संयोग वियोग में, इष्ट वियोग लोगों को नहीं सुहाता और अनिष्ट संयोग लोगों को नहीं सुहाता। इष्ट संयोग सुहाता है पर अनिष्ट का वियोग सुहाता है। ये चारों भेद ज्ञानी को नहीं है। क्यों? कि खुद ही परिपूर्ण है, प्रभु तुम सभी बातें पूरा। गायन सहजानंद कवि ने गाया, प्रभु तुम सब ये बातें पूरा। सहजानंद असल सुख अचल सुख पावे, धूरे जग जीवन होगा। प्रभु तुम सब ही बातें पूरा। पर की आशक कहा करे प्रीतम, प्रीतम बनाया आत्मा को, अपने आत्मा को ही प्रीतम बनाया। सब पर की आशक कहा करे क्या करे प्रीतम, तू किन बातें अधूरा। कोई क्षति तो तेरे में है ही नहीं, कोई अधूरास नहीं है, तू क्यों आश करता है पर की। ऐसा अपने स्वरूप की परिपूर्णता के विश्वास से उसमें सुख भी परिपूर्ण है। जब स्वरूप परिपूर्ण है तो स्वरूप में एक मुख्य गुण सुख का है, जिसका जीव को प्रयोजन है। सभी जीव को प्रयोजन सुख का ही है। तो परिपूर्ण सुख की प्रतीति, मैंने विश्वास, खात्री, अनुभव से उसका सबूत है। मेरे में मेरा सुख परिपूर्ण है, इस सुखानुभव से उसका विश्वास और प्रतीति आती है। और यहां से ही सभी पर पदार्थ के प्रति वैराग्य और उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। जो भी इष्ट संयोग, सुखदायक संयोग लोग कहते हैं, वहां उदासीनता हो जाती है। क्योंकि पूर्ण सुख भरा है। जैसे पूरा खाने से तृप्ति हो जाती है, पूरा खा लिया, जितना खाना था उतना उसका उतना पूरा खा लिया और तृप्ति हो गई, तो फिर खाने की इच्छा रही क्या? कोई और थोड़ा ले लो, कहीं हमारा पेट भर गया। पेट भर गया तो खाने की इच्छा समाप्त हो गई। वैसे परिपूर्ण सुख की प्रतीति है, प्रतीति मात्र से सुख परिपूर्ण प्रकट होगा तेरहवें गुण स्थान में। ये तो अरिहंत दशा जब आएगी तब पूरा सुख प्रकट होगा, अनंत सुख। लेकिन प्रतीति चतुर्थ गुण स्थान में है। प्रतीति तो चतुर्थ गुण स्थान में है। प्रतीति मात्र से सभी जगत के सभी पर पदार्थ से वैराग्य और उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। मेरा सुख मेरे में पूरा पूरा है, उसका मुझे पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। श्रद्धा अधूरी होती नहीं कभी, पूरी श्रद्धा है, उसको प्रतीति कहते हैं। और यही वैराग्य का, उदासीनता का कारण है। जगत के सभी पदार्थ के प्रति उदासीन हो जाता है। ये बात ली पूर्ण सुख की प्रतीति वाले। अब एक पहलू लिया है पुरुषार्थ की उत्पत्ति का कारणभूत, एक पहलू है। यह पहलू है प्रत्यक्ष स्वरूप संवेदन। क्या स्वरूप संवेदन में प्रत्यक्षता होती है पर्याय में, और ये स्वसंवेदन का विषय जो स्वरूप है वो अनंत प्रत्यक्ष है। संधि क्या हुई? स्वरूप की अनंत प्रत्यक्षता विषय है और प्रत्यक्ष स्वसंवेदन इसका विषय है, विषय ही है। ठीक है, स्वसंवेदन में जो प्रत्यक्ष पना है, क्योंकि वेदन कभी परोक्ष होता ही नहीं, वेद्य वेदक भाव एक ही पर्याय में होने से, तो स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप संवेदन इसका विषय है स्वरूप की अनंत जैसे कोई सिंह है अपने शिकार पे छलन मारता है, क्या करता है सिंह? क्या करता है? अपने शिकार पर छलन मारेगा। सिंह का छलन का एक चित्र देते हैं कि जब वो छलन लगाता है तो जमीन पर वो फेस मारता है, तो जोर देता है और शरीर को उछालता है, उछालता है तो 20-25 मीटर वो आकाश में उछल करके फिर पड़ता है जमीन पर। 20-25 मीटर का छलन लगा देता है, ताकत बहुत है ना, इतना जोर से उछलता है। ऐसे पुरुषार्थ की छलांग लगती है स्वरूप पे, काय से? प्रत्यक्षता के कारण से। ये जो प्रत्यक्षता का पहलू है वो अध्यात्म की दशा के पुरुषार्थ का कारणभूत है। कभी कभी हमारे चर्चा में पुरुषार्थ का प्रश्न आता है कि हम पुरुषार्थ कैसे करें या पुरुषार्थ कैसे बढ़ाएं, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आता है। लेकिन जब तक स्वरूप की प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष तौर से वेदन गोचर नहीं होती है तब तक पुरुषार्थ उछलेगा नहीं, क्योंकि एक कृत्रिम उछाला लेने का कोई काम नहीं है, कृत्रिम जोर करने का काम नहीं। इस तरह से स्वरूप का पुरुषार्थ चलता है, जिसको चलता है उसमें इस तरह से ही चलता है।
वैसे मोक्ष ने पुरुषार्थ ने कृत्रिम के बारे
में मोक्ष ने पुरुषार्थ नो स्टेज स्वरूप निश्चय के बाद है। दूसरा संकेत जब होता है तब अनुभवांशे मैंने वेदन अंश से प्रतीति आती है, तब वीर्य गुण में चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा स्टार्ट होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा। क्यों? कि वहां उसने ज्ञान वेदन में जो प्रत्यक्षता है उसके आधार से स्वरूप की अनंत प्रत्यक्षता की पहचान की। तो पहचान होते ही पुरुषार्थ चल में स्फूर्ण आई वीर्य गुण की। गुरुदेव उसको चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा कहते थे, तो वो बात गुरुदेव ने लिया है परमागुणसार के 190 नंबर के वचनामृत में है, 190 देख लेना।
બીજા સંગીત પહેલા પુરુષાર્થને શું કહેવું? જે પ્રયત્ન કરે છે
કઈ નહીં,
કઈ નહીં, તો એ ત્યાં સુધી પહોંચે છે તેનું કારણ શ્રદ્ધાનો,
જ્યાં સુધી પહોંચવામાં આગળની જે બધી લાઈન ચોક આઉટ કરી છે એ કારણ છે, વેદનાથી લઈને પૂર્ણતાના લક્ષથી લઈને અવલોકનથી લઈને વેદના,
એટલે એની એક રીતે પુરુષાર્થ નહીં કહી શકાય,
પુરુષાર્થ
વ્યવહારિક શબ્દ
પુરુષાર્થ નથી, જ્ઞાનની પ્રક્રિયા છે, જ્ઞાનનું કારણ
પુરુષાર્થ,
જ્ઞાનનું કાર્ય છે, એ જ્ઞાન નથી પુરુષાર્થ, પહેલા પહેલા ઉત્તમ છે, આમ તો રૂચિપૂર્વક થયું, અનન્ય રૂચિ ઉત્પન્ન થઈ, સાથે સાથે પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થયો.
સ્વલ્પ પ્રત્યક્ષતા જોઈએ પછી જ પુરુષાર્થો છે,
ત્યારે એની અનન્ય રૂચિ ઉત્પન્ન થાય ગુણ નિદાનની, અને રૂચિને સાથે રૂચિ અનુયાયી વિરિય. પરમ શાંત સુધામય શાંતિ આકુલતા કો દૂર કર દેતી હૈ. કેસી આત્મ શાંતિ? અમૃતમયી હૈ. સુધા માને અમૃત, અમૃતમયી શાંતિ હૈ. શાંતિ કા આસ્વાદન કેસા હૈ? અમૃત જૈસા. અમૃત પીને મેં કિસી કો તૃપ્તિ નહીં હોતી હૈ. યે પુદગલ કે ખાને પીને મેં પેટ ભર જાતા હૈ. અમૃત મેં શાંતિ કા આસ્વાદન લેને મેં કભી તૃપ્તિ હોતી નહીં. અનંતકાલ પીએ જાઓ, અનંતકાલ તક પીએ જાઓ, પીએ જાઓ, ઘૂંટ ભર ભર કે પીએ જાઓ. એસી જો પરમ શાંત નમૂનો ચાખવા જેવો છે. એ તો ચીજ એટલી જલદ હૈ કે સુનને મેં ભી
પાવર ચડ જાય,
પાવર આ જાય,
માનસિક શાંતિ પેદા હો જાતી, સુનતે હી માનસિક શાંતિ પેદા હો જાતી. અનુભવ રસ કી બાત તો અલગ હૈ. કહેતે હૈ કે પરમ શાંત સુધા રસમયી જો શાંતિ હૈ, અમૃત રસ ભરા હૈ ઉસમે. વો આકુલતા કો ખતમ કરતી હૈ, આકુલતા કો દૂર કરતી હૈ, મેં આકુલતા કો ખતમ કરતી હૈ.
આકુલતા હોતી હૈ નહીં.
દુઃખ દોહર દૂર એક રાહ, સુખ સંપત્ સુખ. આનંદનજીને વહા બાત લીધા કે ભગવાન કેસે હૈ, શાંત સુધાર સે જીલતે નિરખત તૃપ્ત. ભગવાન કી મુદ્રા એસી હૈ, શાંત સુધારસ ઉસમે સે નિર્જરતે હૈ. દેખને વાલે કો ભી તૃપ્તિ નહીં હોતી, ભોગને વાલે કો તો હોગી કહાં સે.
હમે ભરી મુક્તિ રચી રે.
ઇસકી ઉપમા કહાં કિસકે સાથ દેને? અમી મેં અમૃત, અમૃત ભરી મુક્તિ હૈ. વૈસા હી હૈ. આપ સમુસરણ મેં જાઈએ, ભગવાન કો દેખતે દેખતે આપકા ઉપયોગ હટાને કા મન નહીં હોયગા. ઓર ઉતના દેખતે રહોગે, ઉતના દેખતે રહોગે, ઉતના દેખતે રહોગે, ન ભૂખ લગેગી, ન તૃષ્ણા લગેગી, નિંદ્રા આયેગી, ન કોઈ હાજત હોયગી, સબ ભૂલ જાઓગે. પરમોત્કૃષ્ટ દેહાતી દશા હૈ ને, તો એ દેખો સબ દેહ કી સબ બાતે ભૂલ જાતા હૈ. દેખને વાલા એસી મૂર્તિ હોતી હૈ. તો આકુલતા નહીં રહેતી, શાંત રસ કા પ્રવાહ નિકલતા હૈ. બેહદ શાંતિ કે ભંડાર મેં સે કહાં સે નિકલતા હૈ? બેહદ શાંતિ કા જો ભંડાર ભીતર મેં ભરા હૈ, ઉસમેં સે જો પ્રવાહ ચલતા હૈ, વો આકુલતા કો ખતમ કરતા હૈ. આકુલતા કો આને હી નહીં દેતા, પેદા હી નહીં હોને દેતા. એસી ચીજે યાર કિતના સુંદર હોગા. અરે જિસકી ચર્ચા ઇતની સુંદર હૈ વો કિતના સુંદર હોગા. જિસકી ચર્ચા ઇતની સુંદર હૈ વો ખુદ કિતના સુંદર હોગા. अभी भेज दिया आप लोगों को कुछ सेकंडों के लिए भेज दिए कि चले जाइए समोसरम में, देखो भगवान को, भगवान कैसे
रहे।
और अभी आखिर का है, अभेद निज स्वरूप की व्यापकता, अभेद निज स्वरूप की व्यापकता एकाग्रता रूप ध्यान को उत्पन्न करती है। ध्यान कैसे उत्पन्न होता है? ध्यान में मुख्य बात है व्याप्य व्यापकता के, ये जो पैर से माथा तक, सिर तक, सिर से पैर तक शरीराकार चैतन्य पिंड है आत्मा, और व्याप्य व्यापक भाव से वेदन आता है तब एकाग्रता रूप ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन अध्यात्म का कैसे लगता है? इस तरह से लगता है, वो उसे थोड़ा प्रैक्टिकल साइड का है, इसलिए शायद शब्दों से समझ में नहीं भी आए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने से मुमुक्षुता में और कुछ ध्यान के परिधि में, सर्कमफरेंस में थोड़ा बहुत नजदीक आने से ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ सकती है, आने लगती है। तो वो एकाग्रता अंतर में ध्यान में कैसे लगती है, इसका कारण निज अभेद स्वरूप की व्यापकता का जो पहलू है, व्याप्य व्यापक भाव से अपने आप को विलन में लेते हैं तो क्षेत्र अपेक्षा से पूरा चैतन्य पिंड में व्यापकता अनुभव गोचर होती है और वो एकाग्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को ले आती है। तो क्या है कि ये जो एकाग्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो जमने लगता है और तो उसकी जमावट होने लगती है ध्यान में, तो फिर जम जाता है शुद्ध उपयोग में, फिर आत्मा जम जाता है। इस तरह से ज्ञानियों को ध्यान की एक प्रक्रिया चलती है। बहुभाग विषय तो थोड़ा उस लाइन में आगे बढ़ने से ही मालूम पड़ता है, बहुत प्रैक्टिकल साइड का ये विषय। तो समय समाप्त होता है।
Sukha Sukha Sukha